अब आगे। आकाश खाना खाने पर मजबूर हो गया था और रश्मि को घूरने लगा था, लेकिन अगले ही पल उसे वाकई खाने का स्वाद काफी अच्छा लगा था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तब रश्मि मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अब पता चला मैं इस तरह से खाना क्यों खा रही हूँ। तब आकाश ने कुछ नहीं कहा और फिर आराम से चुपचाप वो रश्मि के हाथों से खाना खाने लगा। अब अरमान हैरानी से आकाश की ओर देखने लगा था। वहीं आस्था को भी अब रश्मि की ट्रिक पसंद आई थी और मुस्कुराते हुए बोली, अरमान जी यहाँ देखिए तो। और अरमान देखने लगा। तब आस्था बोली, अब आप आई लव यू बोलिए ना। अब आस्था की बात सुनकर अरमान मुस्कुराया और सॉफ्ट वॉइस में बोला, आई लव यू। अब जैसे ही अरमान ने आई लव यू कहने के लिए अपना मुंह खोला, उसे नहीं पता था कि आस्था उसके साथ यही करने वाली है। वो तो सिर्फ आस्था की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था। अचानक आस्था ने अरमान को अपने हाथों से खाना खिला दिया था। अब अरमान घूर कर आस्था को देखने लगा, लेकिन तब तक सभी अरमान को इस तरह से मुंह बना हुआ देखकर जोरों से हंसने लगे थे। वहीं अरमान भी अब चुपचाप खाना खाने लगा था। उसके मुंह में स्वाद घुल गया था और उसे भी वहां का खाना पसंद आया था, और धीरे धीरे अब अरमान ने भी खाना खाना शुरू कर दिया था। अब जब अरमान और आकाश दोनों खाना खा रहे थे, आहान के दादाजी अविनाश, भला वे कैसे रुक सकते थे, उन्होंने भी खाना खाना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर वही ध्रुव जैसे ही बाहर गया और उसने देखा कि एक लड़की सड़क पर गिरी हुई है। उसके बाल उसके पूरे चेहरे पर आ रहे थे। क्योंकि वंशिका जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, तो एक गार्ड ने वंशिका को धक्का दे दिया था और वंशिका सड़क पर गिर गई थी। उसके बाल उसके पूरे चेहरे पर आ गए थे। और तब जैसे ही ध्रुव बाहर आया, उसने गार्ड से पूछा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तब एक गार्ड धीरे से बोला, सर ये लड़की अंदर आना चाहती थी और हमने इसे मना किया, लेकिन ये नहीं मानी। और फिर हमने इसे निकालने की कोशिश की तो गलती से अचानक उसको धक्का लग गया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, ध्रुव को ये बात पसंद नहीं आई और वो घूर कर अपने गार्ड्स को देखने लगा और सख्त आवाज में बोला, हमने तुम लोगों को पोलाइटली बोल दिया था कि सब लोगों को पोलाइटली मना करना है, इस तरह से हिंसक व्यवहार नहीं करना है। ये बोलकर ध्रुव उस लड़की की ओर बढ़ा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, हे लिसन, आई एम सो सॉरी, हमारे गार्ड्स की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। तब वो अचानक से वंशिका पलटी और उसके बाल उसके चेहरे से हट गए थे और वो ध्रुव को गुस्से से घूर कर देखने लगी और खड़ी होकर बोली, अच्छा आपके सॉरी कहने से क्या सब ठीक हो जाएगा? हाँ, एक तो आपका ये बदतमीज गार्ड्स, इन्होंने मुझे चोट लगा दी और मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। आप लोगों ने क्या इस जगह को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ रखा है? हाँ, या गरीबों की आप लोगों की नज़र में कोई अहमियत नहीं है? अब जैसे ही वंशिका ने सीधे सीधे ध्रुव को डांटना शुरू किया, ध्रुव हैरानी से वंशिका को देखने लगा। वंशिका की खूबसूरत सी आंखें, उसके हिलते हुए होंठ, उसकी छोटी सी पतली सी नाक जिसमें उसने एक छोटा सा बारीक नोजपिन पहना हुआ था, उसकी खूबसूरती, उसकी पर्सनैलिटी में ध्रुव पूरी तरह से उनमें खो गया था। ऐसा लगने लगा था मानो ध्रुव के दिल में गिटार बजने लगे हों और बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था। गीत के बोल यहाँ पर दिए गए हैं। वंशिका को देखकर ध्रुव को एक अलग तरह की फीलिंग आई थी और कितनी ही देर तक ध्रुव वंशिका को निहारता रहा। वहीं जब वंशिका ने ये देखा कि वो इतनी देर से ध्रुव को बातें सुना रही है लेकिन ध्रुव उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वंशिका चिढ़ गई थी और फटाफट से वंशिका अपने सीधे हाथ की चुटकी 2 से 3 बार बजाते हुए बोली, हे हेलो मिस्टर, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? बहरे हो गए हो तुम? अब जब वंशिका ने उसके सामने चुटकी बजाई, तब जाकर ध्रुव अपने हसीन ख्वाब से बाहर आया और वंशिका की ओर देखकर हल्की मुस्कान लाते हुए बोला, आई एम सो सॉरी, मैं अपने गार्ड्स की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप प्लीज अगर आपको भूख लगी है आप आकर हमारे साथ खाना खा सकती हैं। लेकिन तब तक वंशिका का मूड खराब हो चुका था। वो झल्लाते हुए बोली, जी नहीं शुक्रिया, अब आप लोग ही खाना खा लीजिए, मैं कहीं आगे चलकर ढाबे पर खाना खा लूंगी। ये बोलकर अब जल्दी ही वंशिका ने पूरे टशन में ध्रुव के सामने अपनी स्कूटी स्टार्ट की थी और जल्दी ही स्कूटी पर सवार होकर वो वहां से आगे बढ़ चली गई। हालांकि उसे अरमान सिंघानिया का पीछा करना था, लेकिन उसने गार्ड से कहते हुए सुन लिया था कि उनके बॉस को अभी इसी सड़क पर 1.5 से 2 घंटे का रास्ता और तय करना है, तो इसीलिए वंशिका समझ चुकी थी कि अभी अरमान का सफर लंबा होने वाला है और वो खाना तो कहीं भी रास्ते में एक और ढाबा पड़ेगा वहां खा सकती है,
वैसे भी हाईवे रोड पर जगह जगह 20-25 मिनट की दूरी पर कितने ही सारे ढाबे बने हुए थे, इसीलिए वंशिका ने अब वहां रहना ठीक नहीं समझा। अब जैसे ही वंशिका वहां से चली गई, कितनी ही देर तक ध्रुव उस दिशा में देखने लगा और फिर वापस से मुड़कर अपने गार्ड्स को गुस्से में अकड़ते हुए बोला, दूसरी बार ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये बोलकर अब ध्रुव वापस से आकर वहां बैठ गया था और जैसे ही वो वहां आया, उसने देखा कि सब लोग अब मजे से खाना खा रहे थे। ध्रुव हैरान हो गया कि कांटा चम्मच छुरी से खाने वाले लोग आज अपने हाथों से खाना कैसे खा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ध्रुव चम्मच लेकर बैठ गया था और उसने खाना खाना शुरू कर दिया था। एंजल हाथ से खाना खाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो भी ध्रुव की तरह चम्मच से खा रही थी और अविनाश तो अपनी बहन आस्था को कॉपी कर रहा था। वेल, जल्दी ही सब लोगों ने अच्छी तरह से खाना खा लिया था और आस्था तो आज अपनी पसंद का खाना खाकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन ये खुशी थोड़ी ही देर के लिए थी। आस्था ने देखा कि खाना खाने के बाद अब आस्था का सर चकराने लगा था और फटाफट से उसे उबकाई आने लगी थी और वो बाथरूम की तरफ भागी। अरमान उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन नानी माँ ने उसे रोक दिया था और तसल्ली देते हुए बोली, बेटा तुम यहाँ बैठ के खाना खाओ, मैं उसे देखती हूँ। ऐसी हालत में ये सब भोला रहता है, तुम फिक्र मत करो। ये बोलकर जल्दी ही अब नानी माँ अब आस्था के पीछे पीछे जाने लगी। अविनाश भी उठ खड़ा हुआ था, लेकिन नानी माँ ने उन सबको रोक दिया था। अविनाश तो आस्था को थोड़ी देर पहले देखकर ही खुश हो रहा था कि किस तरह से आस्था खा रही थी, वो भी उसी तरह से उसे फॉलो कर रहा था। आस्था का साथ अविनाश को बहुत भा रहा था और सोच रहा था कि बचपन से अगर उसकी बहन उसके साथ होती तो वे लोग इतने अच्छे मोमेंट साथ में शेयर करते, कितनी अच्छी उनकी यादें होती, कितना अच्छा उन्होंने बचपन जिया होता। लेकिन फिलहाल एक इंसान की वजह से उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वेल, अब जैसे ही सब लोग खाना वगैरह खाकर फ्री हो गए और आस्था अब उल्टी करने के बाद वापस आई तो उसका सर थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, इसीलिए अरमान ने आस्था से कहा कि अब आगे का सफर वो वैनिटी वैन में करेंगे। अरमान अपने साथ साथ अपनी एक वैनिटी वैन लेकर चला करता था जिसमें सब सुख सुविधा थी। वो अच्छी तरह से उसमें बाथरूम भी था, एक बेड भी पड़ा हुआ था, एक सोफा भी था, इतना ही नहीं ड्रिंक बार और एक छोटा सा LED टीवी भी लगा हुआ था। एक बड़ा सा अच्छा खासा बेडरूम अरमान सिंघानिया साथ लेकर चला करता था। अब क्योंकि सब लोग गाड़ी में जा रहे थे तो इसीलिए आस्था ने भी गाड़ी ले जाने की जिद की थी, लेकिन अब क्योंकि आस्था को उल्टी लगी थी तो अरमान चाहता था कि आस्था बाकी का आगे का सफर वैनिटी वैन में करे।
इसीलिए आस्था अब अरमान के इंसिस्ट करने पर जल्दी ही वैनिटी वैन में चली गई थी और आराम से बेड पर जाकर लेट गई थी। और अरमान ने अंदर जाकर AC ऑन कर दिया था और प्यार भरे लहजे में बोला, अब सफर चाहे 2 दिन का ही क्यों ना हो, हम आराम से इस वैनिटी वैन में तय कर सकते हैं। वेल, सब लोग मुस्कुराते हुए वापस से आकर गाड़ी में बैठ गए थे और गाड़ी में बैठने से पहले अरमान सिंघानिया ने उस छोटे से ढाबे के ओनर को पूरे 10 लाख रुपए दे दिए थे। आज तो उस ढाबे के मालिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और अरमान में उसे एक जीता जागता भगवान नजर आ रहा था, क्योंकि इस वक्त उसकी जिंदगी काफी ज्यादा उदासीन चल रही थी और वो अपनी जिंदगी की जरूरत पूरी कर सकता था। जल्दी ही एक बार फिर से उन लोगों का गांव का सफर शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी ओर वंशिका 25 से 30 मिनट आगे जाकर एक ढाबे पर बैठकर खाना खाने लगी। उसके बाद उसे बेसब्री से अब अरमान सिंघानिया की गाड़ियों के वहां से पास होने का इंतजार था।